डिंपल के जाल में रौनक हुई बेहाल। अब आगे, अब आस्था और रौनक दोनों ही हैरान हो गई थीं, लेकिन जैसे ही वे वहां गईं, तो प्रिंसिपल साहब खुशी के साथ उन दोनों की ओर देखकर बोले, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आप लोगों को दो दिनों के लिए प्रैक्टिकल के लिए अस्पताल में काम करने का मौका मिल रहा है। अब जैसे ही प्रिंसिपल ने ये कहा, वे दोनों खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लिया था। ये उन दोनों के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में थ्योरी और सब चीज़ों को समझाया जाता था और हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल के तौर पर पेशेंट को ट्रीट करके उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझाया जाता था, वो मौका रौनक और आस्था को मिला था। इसीलिए अब वे दोनों कल से दो दिनों के लिए किसी हॉस्पिटल में वर्क करने वाली थी और लोगों को लाइव इलाज करते हुए साथ ही साथ बड़े बड़े डॉक्टरों की छोटी मोटी हेल्प करने वाली थी। तो दोनों ही बहुत खुश थीं। तब रौनक ने कहा, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा हुआ कि हम दोनों को एक साथ एक जगह जाने का मौका मिला है, वरना अलग अलग मिलता तो मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आस्था का भी यही कहना था और दोनों खुशी खुशी अब घर वापस जाने लगी थीं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने उन्हें बोला था कि उन्हें घर जाकर आराम करना चाहिए और कल से सीधा उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा, वो भी दो दिनों के लिए। इस बात की उन्हें कोई दूर दूर तक खबर नहीं थी कि ये सारा प्लान किसी और ने नहीं बल्कि डिंपल ने किया है। डिंपल ने आस्था और रौनक को हॉस्पिटल बुलाया था ताकि वहां उनसे वो अपनी बेइज्जती का बदला अच्छे से ले सके। डिंपल ने ठान लिया था कि वो अब रौनक और आस्था दोनों को ही सबक सिखाएगी और उन्हें बताएगी कि बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर, वेल, जल्दी से आस्था ने ये खुशखबरी अरमान को घर जाकर बता दी। अरमान ने जैसे ही ये बात सुनी, वो हैरान हो गया और मन मन में सोचने लगा, उस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत कि मुझे बिना पूछे उसने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन फिलहाल अरमान सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैं जानता हूं कि आप वहां जाने से खुश हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। तब आस्था गौर से उसे देखते हुए बोली, क्या अरमान जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब अरमान बोला, वो आस्था, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दो दिन आप ये सारा वक्त मेरे साथ गुजारें। अब जैसे ही अरमान ने अपनी इच्छा जताई, आस्था थोड़ा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिकल करना चाहती थी। लेकिन अरमान की बात सुनकर और अरमान को सैड फेस के साथ देखकर आस्था को अच्छा नहीं लगता था, और वैसे भी अरमान ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, तो आस्था भला अरमान को मना कैसे कर सकती थी। उसने तुरंत अरमान को गले से लगाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हमेशा हैं ही, और अगर आप चाहते हैं कि ये दो दिन हम आपके साथ गुजारें तो हम आपके साथ गुजारेंगे, हम बस अभी रौनक को मैसेज भेजकर इन्फॉर्म कर देते हैं। ऐसा बोलकर आस्था वहां से अब चली गई थी और अरमान के जाने के बाद डार्क फेस के साथ टाइगर की ओर देखकर बोला, उस प्रिंसिपल को मेरे सामने हाजिर करो। वहीं रौनक को जैसे ही ये मैसेज मिला कि आस्था हॉस्पिटल नहीं जा पाएगी, तो रौनक थोड़ी मायूस हो गई थी, लेकिन उसने तो सोच लिया था कि वो प्रैक्टिकल जरूर करेगी, इसीलिए उसने सीधा सीधा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। और जैसे ही रौनक अगले दिन हॉस्पिटल में गई, तो डॉक्टर ने उसे समझा दिया था कि उसे ओटी रूम में रहना होगा, किस तरह से ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं उसे सिर्फ खड़े होकर देखना होगा, तो इसीलिए रौनक ने अपना सर हाँ में हिला गया था। वहीं डिंपल उस वक्त एक डॉक्टर वहां थी, डिंपल जो कि अपना क्लिनिक चलाया करती थी, लेकिन वीकेंड में वो बड़े हॉस्पिटल में 2 से 4 घंटे बैठा करती थी और लोगों को ट्रीटमेंट दिया करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे अपॉइंट किया हुआ था उस हॉस्पिटल में जो वीकेंड में ही बैठा करती थी और काफी महंगा चार्ज किया करती थी। अब जैसे ही उसने अपने चश्मे के पीछे से रौनक की तरफ देखा, तो उसके तन बदन में आग लग गई थी और मौका देखकर उसने सोच लिया कि उसे रौनक के साथ क्या करना है। जल्दी ही रौनक डिंपल के साथ ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। डिंपल ने मास्क पहना था और साथ ही साथ उसने अपने बालों पर फोल्ड करने के लिए एक पॉली बैग वगैरह लपेट रखा था, जिसकी वजह से रौनक डिंपल को ठीक से पहचान नहीं पाई थी। जल्दी ही रौनक ने ओटी रूम में डॉक्टर की हेल्प करना शुरू कर दिया था और डिंपल को असिस्ट कर रही थी। डिंपल जानबूझकर रौनक से पहले तो गलत सामान लेने को कहती और जब रौनक उसे वो सामान दे देती तो डिंपल उसे बड़ी बुरी तरह से फटकार दिया करती। इन द लास्ट डॉक्टर भी इरिटेट हो चुके थे और रौनक की ओर देखकर साफ साफ बोलते हैं, मिस, मुझे लगता है कि आपको बाहर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप लापरवाही से हमें ये उल्टा सीधा सामान पकड़ाती रहीं तो ये हमारे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा, और अभी आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है। हमें तो बोला गया था कि काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट असिस्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कॉलेज के 2 साल सिर्फ और सिर्फ गप्पे ही हाँके हैं, किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं की है। अब इस तरह से अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर रौनक की आंखें भर आती हैं और उसने एक नज़र उन सब की ओर देखा और रोते हुए उस ओटी रूम से बाहर निकल गई थी,
क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि बड़े बड़े डॉक्टर को वो ये देखें कि वो किस तरह से पेशेंट को हैंडल करते हैं, किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन डिम्पल ने चालाकी से सबके सामने रौनक को काफी ज्यादा नीचे दिखाया था। लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। डिम्पल के दिल में अभी बहुत आग लगी हुई थी। उसने सोच लिया कि वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाएगी। कहीं ना कहीं वैसे आस्था पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो आस्था आज क्यों नहीं आई, क्योंकि रौनक के साथ साथ आस्था को भी सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि आस्था के बारे में ज्यादा कुछ खास जानकारी उसके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन रौनक के बारे में वो सारी चीजें जान चुकी थी, क्योंकि आस्था की तो जानकारी ऑलरेडी अरमान ने हाइड करवाई थी, जिसका पता लगाना बेहद मुश्किल था। वहीं रौनक जल्दी ही वहां से निकलकर अब सीधा हॉस्पिटल की कैंटीन में आ गई थी, क्योंकि इस वक्त उसका सर बुरी तरह से दुख रहा था और हॉस्पिटल आने की एक्साइटमेंट में वो सुबह कुछ नाश्ता वगैरह भी करके नहीं आई थी। तो उसने सोचा कि उसे पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। इस तरह से रौनक हार नहीं मान सकती थी। तो इसीलिए अब जैसे ही वो कैंटीन में आई, उसने कैंटीन में अपने लिए कुछ हल्का फुल्का ब्रेड और चाय वगैरह ऑर्डर किया, तो वो वहां पर बैठकर चाय पीने लगी थी। लेकिन अगले ही पल चाय पीने के बाद जैसे ही वो उठकर वहां से जाने लगी, उसे एहसास हुआ मानो कि उसका सर पूरी तरह से फट जाएगा। उसका पूरा शरीर इस वक्त आग की भट्टी की तरह तपने लगा था। रौनक को कुछ एहसास ही नहीं रहा और कब उसकी आंखें भारी होने लगी थी और वो अपना होश गंवाने लगी। वहीं दूसरी ओर अरमान के सामने इस वक्त प्रिंसिपल बैठा हुआ था और जो कि थर थर कांप रहा था। तब अरमान ने उससे सख्ती से पूछा कि इस तरह से दो दिनों के लिए आस्था और रौनक को अपॉइंट करने की आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई, वो भी बिना मुझे इन्फॉर्म किए ये फैसला लेने की। तब उस प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, लेकिन सर ऊपर से एक डॉक्टर ने काफी इंटरेस्ट किया था इन दोनों ब्राइट स्टूडेंट को अपने हॉस्पिटल में बुलाने के लिए और इसीलिए हमने उन्हें जाने की परमिशन दे दी थी। अब अरमान काफी हद तक हैरान हो गया था कि आखिरकार ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो इस तरह जिसने असिस्ट करने के लिए आस्था और रौनक को ही चुना है। और जैसे ही अरमान ने थोड़ी सी तहकीकात करवाई तो डिम्पल का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। डिम्पल को देखने के बाद अरमान हैरान हो गया था, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा छा गया था
और वो बोला, ये लड़की, क्या इस लड़की ने आस्था भाभी और रौनक को असिस्ट करने के लिए बुलाया है? ये लड़की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक नंबर की बदतमीज और नकचड़ी लड़की है जो अपनी ईगो में कुछ भी कर सकती है, इसे खुद पता नहीं रहता। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान एक ही बार में उसकी बात समझ गया था, क्योंकि वो जान चुका था कि डिम्पल वही लड़की है जिसने सालों पहले ध्रुव को रिजेक्ट किया था और इसके बाद ध्रुव ने अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल की थी जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वेल, तभी अरमान सोचने लगा कि आखिरकार इस लड़की का इस तरह से आस्था और रौनक को वहां बुलाने का क्या मैटर है, और ये आस्था और रौनक से कब मिली। कहीं ना कहीं उन्हें इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त रश्मि अपने हाथ में कॉफी की ट्रॉली लिए स्टडी रूम में चली आती हैं, क्योंकि वे सब के सब इस वक्त स्टडी रूम में थे। अब जैसे रश्मि वहां गई, बारी बारी से सबको कॉफी देने लगी और इत्तेफाक से उसकी नज़र डिम्पल के स्केच पर चली गई थी और डिम्पल को देखकर वो पूरी तरह परेशान हो गई और माथे पर बल्ला कर बोली, ये लड़की, इस लड़की की फोटो आप लोगों के पास क्या कर रही है? अब जैसी रश्मि ने ये बोला, सब हैरानी से डिम्पल की ओर देखने लगे थे। तभी ध्रुव आके आया था और बोला, भाभी, क्या आप इसे जानती हैं? अब क्योंकि रश्मि आकाश की वाइफ थी तो वे सब उसे रश्मि को भाभी कहकर पुकारा करते थे। तब रश्मि बोली, हाँ, मैं इस लड़की को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। एक नंबर की बदतमीज और घमंडी लड़की है। इसको तो कल आस्था ने चांटा भी मारा था और रौनक ने धक्का दिया था। अब जैसी रश्मि ने फ्लो में होटल वाली सारी बात उन लोगों को बताई तो सबके चेहरे पूरी तरह से उतर गए थे और अब उन्हें अंदेशा हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आस्था को तो अरमान ने रोक लिया था, लेकिन रौनक उसके ट्रैप में फंस गई थी। अब जल्दी ही सबको होश आया। आहान पागलों की तरह जल्दी ही हॉस्पिटल की ओर भागता है। वहीं बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए थे। अरमान ने रश्मि को आस्था का ख्याल रखने को कहा और खुद भी वो वहां से चला गया था, क्योंकि इस वक्त रौनक की जान और इज्जत दोनों ही खतरे में थी। क्योंकि जब रौनक चाय पी रही थी तो चुपके से डिम्पल ने उसकी चाय में कुछ ऐसे नशे के ड्रग्स डलवा दिए थे जिसके बाद रौनक अपने आप को सबके सामने पूरी तरह से न्यूट कर सकती थी और पूरे हॉस्पिटल में वो अपने कपड़े उतार सकती थी। उसका शरीर पूरी तरह से आग में भट्टी की तरह जलने लगा था, कोई होश नहीं रहने वाला था और रौनक ने इसकी शुरुआत भी कर दी थी और सभी लोग हैरानी से रौनक की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे हॉस्पिटल में एक जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। रौनक को किसी तरह का कोई होश नहीं था, उसे तो पूरी तरह से गर्मी लग रही थी। जल्दी ही रौनक ने एक व्हाइट कोट जो डॉक्टर का पहना हुआ था उसने वो उतार दिया था। व्हाइट कोट उतारकर उसने साइड में फेंक दिया था और जोरों से नशे की हालत में चिल्ला रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोई तो इसे ऑन करो, कोई तो कुछ करो। वहीं डिम्पल ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी।
थी। साथ साथ अपने फोन को लेकर वो वहां मौजूद थी और रौनक की वीडियो शूट करने लगी थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि रौनक यहां सबके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देगी और फिर रौनक का वो अच्छा सा MMS बनाकर दुनिया भर में उसकी बेइज्जती कर देगी और इस तरह से डिंपल का ईगो सेटिस्फाई होने वाला था। अब धीरे धीरे रौनक ने अपना जो उसने टॉप पहन रखा था वो टॉप भी उतार दिया था। अब रौनक हाफ इनरवियर जीन्स में वहां खड़ी हुई थी। सभी लोग हैरानी से रौनक का ये शो देख रहे थे। वहीं कुछ लड़के तो बड़ी ही बेशर्मी से उसे देख रहे थे। वहीं डिंपल को तो बहुत मजा आने लगा था और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और साथ ही साथ कुछ औरतें कुछ नर्स चिल्ला भी रही थी कि इस लड़की को रोको, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। कुछ नर्स उसे रोकने के लिए आगे भी बढ़ी लेकिन डिंपल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हमें इस तरह से इस लड़की को नहीं रोकना चाहिए, हो सकता है कि लड़की बाद में हम पर ही कुछ इल्जाम लगा दे। एक काम करो, फटाफट से पुलिस को फोन कर दो, पुलिस इस लड़की को देख लेगी। डिंपल की बात सबको सही लगती है, कोई भी वैसे भी किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए जल्दी ही पुलिस को फोन कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि रौनक अपनी जीन्स उतारती और अपनी ब्रा से भी खुद को आजाद करती, ठीक उसी वक्त अहान वहां गया था और जैसे उसने इतनी सारी भीड़ देखी और रौनक को उनके बीच में देखा तो वो आग की भट्टी में सुलगने लगा था। जल्दी से जाकर ना आव देखा ना ताव, सीधा उसने रौनक को गले से लगा लिया और फिर अपना ब्लेजर उसको पहना दिया। अब अहान को वहां देखकर सब लोग हैरान हो चुके थे और एक दूसरे को खुसर पुसर कर रहे थे। लेकिन अहान के ठीक पीछे पीछे ध्रुव, आकाश, सुमित और अरमान भी आ पहुंचते हैं तो सबके सब एक साइड में हो गए थे, क्योंकि अरमान सिंघानिया का पावरफुल ओरा ही काफी था उन सबको साइड में करने के लिए। वहीं डिंपल के तो तांता आपस में बजने लगे थे कि अरमान सिंघानिया खुद ब खुद यहाँ आया है तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। साथ साथ ध्रुव को अरमान के साथ देखकर डिंपल की आंखें और हैरानी से फैल गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव इस तरह से यहाँ आ जाएगा और तभी ध्रुव की नजर भीड़ में छुपी हुई डिंपल पर पड़ी।